Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Radha, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Garanitai, Garanitai. Garanitai Jaya Garanitai 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 Prabhupada, 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 Srila Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya. Naram chaiva narottamam. Devim sarasvatim vyasam. Tato jaya mudiraye nashta praesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishike Srimad Bhagavatam Skandadas Adhyaya Ek Shlok Sankhya. Mataram Pitaram Ratran Sarvancha Surudaha Tata Janti He He Asutrupaha Lubdha Rajanaha Prayashaha Bhuvi Mataram Pitaram Bhratran Mataram Pitaram Bhratran Sarvamsha Surudastata Sarvamsha Surudastata Gantihi Asutruptolubdha Gantihi Asutruptolubdha Rajanah Prayashobhuihi Rajanah Prayashobhuihi राजानः प्रायशो भुवि। मातरं पितरं भ्रातरं सर्वांस्तथा मृदरं जातं सुहृदस्तदा राजानां प्रायशो भुवि। मातरम माता को, पितरम पिता को, भ्रातृन भाइयों को, सर्वांश सबको, सुहृदा मित्रगण तथा भी ज्ञान्ति मारते हैं कि निस्संदेह असुत त्रुपहा जो अपनी इंद्रियों के लिए अन्य से ईर्ष्या करते हैं, लुब्धा लालची राजा नहा ऐसे राजा प्रायशः प्राय भुवि भुवि पर पृथ्वी पर। अनुवाद और तात्पर्य इस जॉइंट ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की अनुवाद। इस पृथ्वी पर इंद्रतृप्ति के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधा गुंधा वध करते हैं। वे अपनी अपनी सनक की पूर्ति को पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपनी माता पिता भाइयों या मित्रों का भी वध कर देते हैं। तात्पर्य, हम भारत के इतिहास में पाते हैं कि औरंगजेब ने अपनी राजनीति महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने भाई तथा भतीजों को मार डाला और अपने पिता को बंदी बना दिया। इस तरह के अनेक दृष्टांत मिलते हैं और कंस ऐसा ही राजा था। कंस को अपने भांजों को मारने तथा अपनी बहन तथा पिता को बंदी बनाने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। असुरों के लिए ऐसे कार्य करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि कंस असुर था, किंतु उसे पता था कि विष्णु का वध नहीं किया जा सकता है और इस तरह उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु के कार्यों की थोड़ी सी भी जानकारी से मोक्ष मिल सकता है। कंस कृष्ण के विषय में थोड़ा बहुत जानता था कि उनका वध नहीं किया जा सकता है। अंततः विष्णु या कृष्ण को अपना शत्रु मानते हुए भी उसे मोक्ष मिल सका। भला जो व्यक्ति भगवद्गीता जैसे शास्त्रों की विवरणों द्वारा कृष्ण को पूरी तरह जानता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। अतः हरेक का कर्तव्य है कि वह भगवद्गीता पढ़े और कृष्ण को पूरी तरह समझे। इससे उसका जीवन सफल हो सकता है। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता शिवशाकान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है, जिसके अंदर कंस का ये जो कार्य है कि उनकी देवकी की बहन के उनके पुत्रों को मारना, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई महान व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ गलत कार्य करता है तो आश्चर्य माना जाता है। अगर दुष्ट व्यक्ति अगर थोड़ा अच्छा कार्य करता है तो आश्चर्य माना जाता है। तो आश्चर्य जो है तभी होगा जब उनके स्वभाव के विपरीत कार्य करता हो। अभी पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, दोनों श्लोकों में, यानी 65 और 67 का श्लोक में, जैसे कंस को समाचार मिला, या नारद जी ने कहा, हे कंस देखो कोई भी पुत्र हो सकता है आपको मारने वाला, और जितने भी यदुवंश में हैं वो सब कोई और नहीं देवता है, आपको मारने के लिए तैयार है। और जैसे ये दो बातें उन्होंने सुना, तुरंत कंस ने एक योजना बनाया, मैं कैसे उन पुत्रों को मारूं। तो नारद जी के सामने उन्होंने नहीं मारा, नारद जी ने यही बात भी कहा था कंस को, मेरे सामने मत मारो, तो मेरे जाने के बाद ही करो। तो नारद जी जाने के बाद एक के बाद पुत्रों को, छः के छः पुत्रों को उन्होंने मारा। कुछ लोगों का कहना है कि कंस ने उसी दिन नहीं मारा था जिस दिन के पुत्र का जन्म हुआ था, पुत्रों का जन्म हुए थोड़ा सा बड़े होने के बाद वो बालकों को, बच्चों को मारा उन्होंने। वैसे किसी का एक साल था, किसी का दो साल था, ऐसा था। तो उन्होंने पाँच साल के बाद यानी छठे साल में उन्होंने छः के छः पुत्रों को उन्होंने मारा। जैसे कंस इस प्रकार मारने का जो वर्णन इस श्लोक में हुआ है, तो ये वर्णन सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे थे, परीक्षित महाराज को हो सकता है कि अरे कंस ने ऐसा कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता है, क्या किया है, क्या संदेह हो सकता है। उस संदेह और उस आश्चर्य को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक को वर्णन करते हैं, कहते हैं मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश सुहृदस्तथा। पांच प्रकार के लोग हैं, माता यानी माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है भाई, चौथा है अपने जो जो सब सगे संबंधी हैं, और पांचवा है सुहृद यानी मित्र। तथा घ्नन्ति ही अस्तृप्तो लुब्धा, घ्नन्ति करते मारने पे तुले हो जाते हैं। क्यों मारने पे तुले हो जाते हैं? जैसे उनको अपने जीवन के लिए खतरा महसूस होता है, खतरा महसूस होते ही तुरंत उनको मार देते हैं। वो आगे पीछे सोचते नहीं कि वो कौन है, वो क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी इंद्रिय तृप्ति में ये व्यक्ति बाधक है, तो इसलिए उसको खत्म करो, जस्ट किल हिम। हाँ, ये कौन है उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वही व्यक्ति मेरा है जो मुझे इंद्रिय तृप्ति देता है। ये भौतिकवादियों का फिलॉसफी है। तो भौतिकवादियों का दर्शन क्या, फिलॉसफी क्या है? ये मेरा प्रिय है, ये मेरा माता है, मेरा पिता है, कोई बंधु है, बांधव, वो इसलिए क्योंकि वो मेरी इंद्रिय तृप्ति में सहयोग दे रहे। जैसे मेरी इंद्रिय तृप्ति में कोई व्यक्ति बाधक बनता है, वो व्यक्ति दुश्मन है, और उसको मेरे नज़र से हटाना चाहता हूँ, नज़र से ही नहीं पृथ्वी से हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए बाधक है। तो ये जो ममता या ममता दिखाई पड़ता है, यानी आसक्ति या प्रेम इन भौतिकवादियों का, तो वो प्रेम और आसक्ति किस प्रकार है? वो उतना ही हद तक है जब तक आपसे उनको कुछ फायदा है, कुछ इंद्रिय तृप्ति का फायदा है। तो इसलिए ये भौतिक जगत के जितने भी प्रेम हैं, आसक्ति हैं, उनको शास्त्रों में और आचार्यों ने बहुत खंडन किया है, क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति नहीं है, बल्कि केवल इंद्रिय भोग का ही एक प्रतीक है बस। क्योंकि अगर मैं प्रेम दिखाऊंगा एक व्यक्ति को, तो मुझे और इंद्रिय तृप्ति दे सकता है, तो ये आशा के साथ लोग प्रेम दिखाते हैं। इसलिए इस जगत में जो लोग प्रेम को ढूंढना जानते हैं, वो सोचते हैं कि वो मेरा ये है, ये इसका मैं हूँ, अनेकों अनेकों संबंध जोड़ के सुनाते हैं, ये सब मिथ्या है, ये सब फॉल्स है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा संबंधी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा माता है, मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये सब कोई किसी का नहीं इस जगत में। इस जगत में लोग केवल एक ही कार्य को ढूंढ रहे, एक ही चीज़ को ढूंढ रहे हो, क्या है? इंद्रिय तृप्ति को ढूंढ रहे हैं। और जो व्यक्ति इस इंद्रिय तृप्ति में जितना सहयोग देता है, वो उतना करीब बन जाता है। खास करके जो राजा के पद में है, इस श्लोक में वर्णन किया गया है राजानः प्रायशो भुवि। भुवि का अर्थ इस पृथ्वी पे राजानः, जो राज्ञाः या राजा लोग होते हैं, राजानः वो प्रायशः प्राय राजा लोग ये कार्य करते हैं। वैसे साधारण जनता भी करता है, लेकिन राजा लोग तो निश्चित रूप में करते हैं, दे डेफिनेटली डू इट।
लेकिन कौन से राजा लोग करते हैं? प्राय सभी राजा करते हैं, एक आध छोड़ के, अम्बरीश महाराज जैसे राजाओं को छोड़ के। उनको अपने जीवन का खतरा था, अम्बरीश महाराज को खतरा होने पर भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना तक नहीं किया, हे भगवान मुझे बचाओ। अस्तित्व में अम्बरीश महाराज चाहते तो वो जो कृत्या जो है, जिसके दुर्वासा मुनि ने जो सृष्टि किया था, उस कृत्या को उसी समय वध कर सकते थे। लेकिन अम्बरीश महाराज के जीवन के लिए खतरा होने पर भी उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, हे भगवान मुझे बचाओ, ना उन्होंने तलवार उठाकर कृत्या से युद्ध करके उनको मारने के लिए प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उनको मालूम था दुर्वासा मुनि मेरा एक गेस्ट है, मैंने निमंत्रण दिया, एक ब्राह्मण है, एक ऋषि है, वो मेरे से नाराज है, उनके द्वारा सृष्टि किया गया है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? ब्राह्मणों का जो कार्य है उनको आदर करना, उनको आदर करना मेरा धर्म है। तो अपनी धर्म निष्ठा को अम्बरीश महाराज ने कभी त्याग नहीं किया, अपना जीवन का खतरा होने पर भी नहीं किया। इसलिए प्रायशो शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रायशो का अर्थ क्या है? प्राय यानी सभी राजा ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ एकाद को छोड़ के, जैसे अम्बरीश महाराज। तो ये जो हमारे जीवन में या कोई भी किसी के जीवन में भी साधारण लोग भी ऐसे देखा जाता है कि राजाओं की तो बात छोड़िए, साधारण जनता समाज में भी सबसे करीब जो व्यक्ति माना जाता है वो सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में हम उसको गिनते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक ऐसे एक लॉयर आए थे हमारे मंदिर में, तो उनसे बातचीत कर रहा था। मैंने कहा आप कौन से लॉयर हो? उन्होंने कहा मैं सिविल लॉयर हूँ। तो उन्होंने कहा कोर्ट में जितने भी केस होते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, झगड़े के मामले में, खास करके प्रॉपर्टी का बटोरा में केस होते हैं, झगड़ा होता है, वो सब 80% जितने भी केस है वो दो भाइयों के बीच में, 80% द केसेस दो भाई या दो संबंधियों के बीच में है। या जितने भी दूर का संबंधी है, दूर का व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा जो है हम सुलटा सकते हैं, लेकिन दो भाइयों के बीच में जो झगड़ा है वो हम कभी भी सुलटा नहीं सकते। इतना हद तक कि एक दूसरे को मारने तक वो ये प्रयास करते हैं। तो ये इस जगत का सृष्टि है। जैसे ये कहा गया मातरम, मातरम वितरम भ्रातृन सर्वाश्च सुहृदस्तथा। ये जो सबसे करीब कौन होता है हमारे लिए? हमारी माँ होती है, और उसके बाद पिता, उसके बाद भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, उसके बाद जो है बंधु होते हैं, उसके बाद मित्र होते हैं। अभी ठीक है, मित्र को तो मार दिया किसी कारण की वजह से, उनसे दुश्मनी की वजह से, लेकिन माता को कोई सोच सकता है? ना हो जाए। यानी असुरों का जो स्वभाव है, स्वभाव रिक्त से अपना स्वभाव की वजह से वो माँ को भी मार सकते हैं, अगर उन माँ से अगर उनको इंद्रत्व का उनका कुछ मिलता है तो। जैसे हम देखते हैं कि असुरी समाज का अर्थ यही है, असुरी समाज का अर्थ यह है कि ये जो संबंध, उन संबंधों को बना के रखना, ये एक सभ्यता, इस सभ्यता को भी त्याग करते हैं। भले ही असुरी प्रवृत्ति वाले कितने भी ज्ञान में बड़े छिड़े क्यों ना हो, कितने भी वो फिलॉसफी में भी बड़े छिड़े क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ने भी बड़े बड़े फिलॉसफी को वर्णन किया था। जब उनका भाई का मृत्यु हुआ, भाई के पत्नी को जाके उन्होंने शरीर और आत्मा का भेद को समझाया था, लेकिन वही हिरण्यकशिपु जिसने कहा ये ममता नहीं रखना चाहिए, किसी दुश्मनी रखना चाहिए, वही हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? प्रहलाद महाराज को मारने में तुला हो गया। इसलिए भले ही सामाजिक दृष्टिकोण से कितने भी ऊंचे स्तर में क्यों ना हो, समाज के लिए हित का कार्य भी करने वाला क्यों ना हो, वो सभी असुर है जब तक वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करता। भले ही वो शास्त्रों में विद्वान भी क्यों ना हो, वो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान भी क्यों ना हो, जब तक वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करता है उसको असुर माना गया है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है ये कृष्ण नहीं माने से दैत्य करी जानी, जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है ये जानो कि वो असुर है। लेकिन ये श्लोक में खास करके इस बात को वर्णन किया गया है कि कंस का ये जो कार्य है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वही कंस जिस देवकी को रक्षा करके सेवा कर रहा था, वही कंस देवकी को मारने पे तुला हो गया, और वही कंस देवकी के पुत्रों को जो माफ कर दिया था, लेके जाओ वसुदेव, हंसते बड़े प्रसन्न होके हुए वसुदेव कहा आप लेके जाओ, चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा चिंता जो है आठवां पुत्र से है, ये पुत्र से कोई मेरा लेना देना नहीं है, उनको लेके जाओ। दया दिखाया था, करुणा दिखाया था, उस पुत्र को स्नेह दिखाया था, तो वही कंस अभी उसी पुत्र को मार दिया। इसलिए कभी भी भौतिकवादियों का स्नेह के भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कब आपसे प्रेम करते हैं, कब आपका दुश्मन बनते हैं, खुद भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते, भगवान ही नहीं जानते, कभी भी उनका पलट जाता है। जैसे अभी देखते हैं मेरे आजकल के जो पॉलिटिकल फील्ड में हैं, वो कभी कोई पार्टी का है, बाद कुछ समय का वही व्यक्ति दूसरा पार्टी का हो जाएगा। अभी बोलेंगे कि मैं व्यक्ति अच्छा है, हमारा पार्टी को वोट दो, बाद में दूसरा तुरंत दूसरे पार्टी में चले जाएगा। तो कोई नैतिकता नहीं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं, देयर इज नथिंग, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये कंस का है। इसलिए जिस व्यक्ति का स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तो उस प्रकार के स्वभाव के अनुसार कार्य करने की वजह से हमको उन कार्यों को देख के विचलित नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति का स्वभाव आपको मालूम है तो उनको आपको मालूम है स्वभाव के अनुसार ही कार्य करने वाला है, तो ये असुरों का या कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करते, उनका स्वभाव है, वो किसी को भी कभी भी मार सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कंस का एक अच्छा ही था, भले ही औरंगजेब को उदाहरण देते, इधर अनेकों अनेकों राजा हुए, तो औरंगजेब करके एक राजा था, उसने क्या किया, अपना पिता को जेल में डाल दिया, शाहजहां को जेल में डाल दिया, और उसके बाद उनके भाइयों को उन्होंने मार दिया, भतीजों को मार दिया, और उन्हें खुद अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजा बनने के लिए वो कुछ भी कर सकते, अपने पिता को उन्हें जेल में डाल दिया था। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कंस ने जो 5000 साल पूर्व किया अभी भी लोग कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। असुर जो है हमेशा से रहे, सृष्टि के प्रारंभ से रहे, ऐसे नहीं कि अभी के असुर है, असुर बड़े असुर है। लेकिन कंस का एक खूबी था, जैसे एक अच्छाई था कंस का, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आगे प्रश्न आता है कि कंस को मुक्ति कैसे मिला। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनका शरीर को स्पर्श किया, इतना बड़ा सौभाग्य इस कंस को कैसे मिला। इसलिए मिला क्योंकि कंस जानता था कि कृष्ण को हम मैं कभी मार नहीं सकता, विष्णु का मृत्यु नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी उनको मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन ज्ञान जरूर था। इससे प्रभुपाद लिखते हैं कंस का ये थोड़ा सा एक ज्ञान होने की वजह से भले ही उन्होंने इतना भयानक असुरत्व कार्य किया, फिर भी उनका मुक्ति प्राप्त हुआ। वैसे तो उनको तो ऐसे साहुज्य मुक्ति जैसा प्राप्त हुआ, लेकिन बात यह है कि उन्होंने थोड़ा भक्ति किया था, भगवान के बारे में जानकारी था उनको। तो प्रश्न आता है कि कंस इतना क्रूर होने पर भी थोड़ा सा जानकारी की वजह से उनको मुक्ति मिल गया, तो ऐसा क्यों? ये बात इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर इतना क्रूर कंस को भी मुक्ति मिल सकता है भगवान की थोड़ी सी जानकारी से, अगर कोई इतनी श्रद्धा से भगवद्गीता भागवत के द्वारा भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, उसका क्या होगा? सातवें स्कंद में भी यही आश्चर्य को युधिष्ठिर महाराज ने प्रकाशित किया था। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को प्रकाशित किया कि शिशुपाल और दंतवक्र जन्म लेते ही क्या हुआ, वो कृष्ण का निंदा करने लगे। जब से उनका बात करना भी नहीं आता था तब से वो कृष्ण का निंदा करते थे। जैसे बच्चे लोग ABCD सीखते हैं, आई सीखते हैं, उनके लिए यही था, कृष्ण वो है, कृष्ण ये है, सबको उनको डांटना, उनको निंदा करना उनका आदत था। तो राजसूय यज्ञ में क्या हुआ, शिशुपाल कृष्ण को बिल्कुल निंदा करने लगे, ऐसे करते न करे। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक आश्चर्य को व्यक्त किया। आश्चर्य पहला ये है कि जो भी व्यक्ति किसी का निंदा करता है, निंदा करने वाला व्यक्ति, भले ही वो व्यक्ति जिसको निंदा करना कर रहा है वो निंदनीय है, निंदात्मक कार्य किया है, भले ही उसने निंदा को सुनने की योग्य है, लेकिन निंदा करने वाला व्यक्ति जो है उसका आयुष कम हो जाता है, या उसका हेल्थ यानी उसका शरीर जो है उसके अंदर बीमारी आ जाता है। हाँ, तो अगर ऐसा है जो एक जिसका पवित्र चरित्र है वैसे व्यक्ति का निंदा करने से क्या होगा, और दुर्गति को प्राप्त करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो भगवान को कोई निंदा करता है तो निश्चित रूप में उनको उनका जिह्वा जो है वो कुष्ठ रोग से पिघल जाना चाहिए। जो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कहा शिशुपाल और दंतवक्र विषय में, तो ऐसा है कि फिर भी मैं देखता हूँ कि शिशुपाल जो है, दंतवक्र जो है, उनका शरीर हष्टपुष्ट है, हाँ बिल्कुल अच्छा बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे। और इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है, ये शिशुपाल ने इतना निंदा किया कृष्ण का, दंतवक्र ने इतना निंदा किया, उनको साहुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ, ऐसा कैसे। जो अनेकों अनेकों लोगों की तपस्या के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता उनको ऐसा कैसे प्राप्त हुआ। तब परीक्षित महाराज नारद जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि शिशुपाल और दंतवक्र ने कृष्ण को खूब निंदा किया। कृष्ण का जो निंदा है वो दो प्रकार होता है, एक है वो निंदा जो अपनी चेतना को पूर्ण तरीके से कृष्ण में मग्न करके निंदा करना, प्रतिकूल निंदा, वो भी प्रतिकूल निंदा में भी दो प्रकार का, अनुकूल निंदा है जैसे गोपियों ने कृष्ण को कहा, अच्छा वो जो चुप चुप के बाली को मारा था, हाँ अच्छा वो, उसको कौन पूछेगा, ये भी निंदा है कृष्ण का ना, उन्होंने कहा था महाभारत में जाके उनको वो ये करो, झूठ बोलो, ऐसा कृष्ण, लेकिन अनुकूल निंदा है गोपियों का। लेकिन जो प्रतिकूल निंदा है, सॉरी प्रतिकूल निंदा है वो दो प्रकार का है। ये क्या है, एक निंदा जिसने वेण ने किया था भगवान के प्रति, तो वेण का जो कृष्ण के प्रति जो निंदा था वो क्या था, वो उसके अंदर कृष्ण के स्वरूप के प्रति या कृष्ण का 24 घंटे का स्मरण या चिंतन नहीं था, उनका जो मन है कृष्ण के स्मरण में मग्न नहीं था वेण का, इसलिए वेण जो है कृष्ण का निंदा करके वो नरक गया। लेकिन शिशुपाल एक तरीके से कृष्ण का निंदा करने की वजह से उन्होंने अपराध किया, लेकिन साथ साथ में उनका मन जो है हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता था, प्रतिकूल रूप में हो तो कृष्ण का स्मरण करने की वजह से क्या हुआ, वो उनका जो कृष्ण के प्रति जो निंदा है वो दोनों न्यूट्रलाइज हो गया, हो गया, इसलिए शिशुपाल को क्या प्राप्त हुआ, साहुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। तो इधर भी कंस का है, कंस का विशेषता क्या है, कंस जो है उनके विष्णु से बहुत द्वेष करता था, लेकिन साथ साथ में उनको मालूम था मैं बल ये विष्णु जो है उसको मार नहीं सकते, वो अजन्मा है। हम पहले देखते हैं कि कंस कहता है अजन्मा विष्णु है, आगे के श्लोकों में इसका वर्णन आता है, विष्णु के ईश्वर क्रोध व्यक्त करता है कंस, तो जो अजन्मा है जिनका जन्म नहीं होता उसको मारना चाहता है, लेकिन कृष्ण अजन्मा है, खाली इतना ही ज्ञान की वजह से कंस का उद्धार हो गया। खैर इधर कंस के जो विषय में जो कहा गया है इस श्लोक में, सार रूप में बात यह है कि शिक्षा ये है इस श्लोक से, ये दुष्ट व्यक्ति वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, इससे उसकी बातों के ऊपर उनके कार्यों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा राजा होता है उनकी जो पदवी होती है उनको संरक्षण करने के लिए, उनकी जो जीवन है उसको रक्षा करने के लिए वो कभी भी किसी को भी कर सकता है, भले ही दूसरे व्यक्ति का इच्छा भी ना हो या उद्देश्य भी ना हो, ये व्यक्ति जो है इनको मैं राजा को हानि पहुंचाऊंगा, खाली राजा को संशय होने मात्र से ही वो मार सकता है। संशय तो दूर, अगर मान लीजिए एक राजा है कोई पोस्ट पे है, अगर कोई योग्य व्यक्ति को थोड़ा सा नजदीक में देखता है आते हुए उनको घबराहट होती है, कहीं मेरा ये मेरा पोस्ट ना छीन जाए, इसलिए मैं उसको कैसे खत्म करूं, इसको कैसे दूर करूं, ऐसे विचार करता है। तो ये कंस का एक कार्य है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है करके परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, क्योंकि यह असुर का स्वभाव है। अभी हम एक कंस के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि इस श्लोक में मातरम पितरम भ्रातृन सूरदन सर्वांश सूरदन, ये पांच प्रकार के लोगों को असुर मार सकते हैं, लेकिन असुरत्व का पराकाष्ठा तभी पराकाष्ठा क्या है? जब वो अपने आप को भगवान समझते हैं, ये असुरी प्रवृत्ति का टॉप मोस्ट है। कम से कम इधर कंस ने ये देखा था कि ये कृष्ण है या ये जो विष्णु है, मैं उनसे द्वेष करता हूं, तो उनका द्वेष का हद उतना हद तक नहीं था जितना मायावादियों का होता है। तो कंस को मालूम था ये कृष्ण है, मैं अलग व्यक्ति हूं, मैं उनको मारना चाहता हूं। खाली उनको मारने की विचार था कृष्ण को या विष्णु को, लेकिन मैं कृष्ण बन जाऊं या मैं विष्णु बन जाऊं, वैसा विचार तो कंस में कम दिखाई पड़ रहा था। लेकिन मायावाद वो होते हैं, वो अपने आप को भगवान मानते हैं या अपने आप को भगवान घोषित भी करते हैं और बोलते हैं केवल मैं ही भगवान नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है, खाली आप अज्ञान को दूर कर लो आप भगवान बन जाओगे, संन्यास ले लो नारायण बन जाओगे। तो इस प्रकार का जो दर्शन को प्रचार करने वाले हैं वो उसको मायावादी कहा जाता है। वो मायावादी गण असुरों का जो स्वभाव होता है, असुरों का जो प्रवृत्ति होता है, उस प्रवृत्ति का जो हद को पार कर लेते हैं। कंस अगर असुर है या राक्षस है हम कहते हैं इस श्लोक में, लेकिन ये मायावादी सिद्धांत को जो पालन करने वाले हैं उनकी दृष्टिकोण से कंस बहुत अच्छा है। क्यों? उन्होंने या कंस जैसे लोग, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि माता को मार सकते हैं, पिता को मार सकते हैं, भाई को मार सकते हैं और बंधुओं को मार सकते हैं और मित्रों को मार सकते हैं, लेकिन मायावादी जो होते हैं अपने शिष्यों को भी मारते हैं, और शिष्यों को नहीं गुरु को भी मार देते हैं। अब चलिए, आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का प्राकट्य दिवस है। रामानुजाचार्य के विषय में या उनका परिचय पहले देता हूं, क्योंकि प्रसंग में इस प्रकार आया क्योंकि अपने एकदम निकटतम व्यक्ति को मारने की जो प्रवृत्ति है वो मायावादियों में सबसे ज्यादा कैसे रहता है। जब श्रीपाद रामानुजाचार्य प्राकट्य हुआ तो उनको एक गुरुकुल में भेजा गया था, तो लेकिन उसके गुरुकुल के जो टीचर थे वो मायावादी थे, जिनका नाम था यादव प्रकाश। यादव प्रकाश उस समय के बड़े विद्वान थे, रामानुजाचार्य उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन यादव प्रकाश मायावादी होने के नाते वो मायावाद दर्शन को सिखा रहे थे, रामानुजाचार्य को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन का बात है कि रामानुजाचार्य क्लास में बैठे थे और यादव प्रकाश वो सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इसके ऊपर व्याख्या करते हुए, उन्होंने व्याख्या किया किस प्रकार ब्रह्म जो है वही सत्य है, ब्रह्म है वही ज्ञान है, वो ब्रह्म है वही आनंद है, यानी ब्रह्म को निर्विशेष के रूप में वर्णन करने शुरू किया, यानी परब्रह्म है, परब्रह्म के ये तीनों गुण हैं। ऐसा नहीं कि परब्रह्म ही सत्य है, परब्रह्म ही ज्ञान है, परब्रह्म ही आनंद है। दीज थ्री सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्रह्मन शास्त्र के अनुसार। लेकिन वो क्या कहने लगे, सत्य और चित्त और आनंद ये तीनों ही ब्रह्म हैं, यानी ब्रह्म का विशेषण के रूप में वर्णन नहीं किया। तब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने एक व्याख्या किया, बहुत उनको दुख लगा कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला आर्टिकल उन्हें एक लंबा एक आर्टिकल लिखे रामानुजाचार्य ने, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। और जैसे उनको गुरु को मालूम पड़ा उनको डर लगने लगा, जैसे डर लगने लगा तो बाकी शिष्यों को बुला के उन्होंने कहा ये जो है ना रामानुजाचार्य इनका बात कभी मत सुनना, और उनका बहुत निंदा करने लगे। तो कुछ दिन के बाद रामानुजाचार्य अपने गुरु यादव प्रकाश की सेवा कर रहे थे, चरण सेवा कर रहे थे, तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ा और गुरु के चरण कमलों के ऊपर गिर पड़ा। और जैसे यादव प्रकाश को मालूम पड़ा कुछ गर्म जो जल है मेरे पैर के ऊपर गिरा, तो आंख खोल के देखे रामानुजाचार्य की आंखों से ये जो जल की धारा हो रही है, उनके रो रहे थे। तो यादव प्रकाश ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो रामानुजाचार्य ने कहा अगर आप बुरा नहीं मानेंगे आज जो आपने क्लास दिया उसके अंदर मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा ही लगा, आपने जो पुंडरीकाक्षिणी ये जो कप्यास्यम पुंडरीकाक्षिणी पुंडरीकस्य अक्षिणी भगवान के जो नेत्रों को आपने वर्णन किया, उपनिषदों में भगवान की जो नेत्र का वर्णन हुआ है, हाँ, कप्यास्यम पुंडरीकक्षिणी, कप्यास्यम, कप्यास्यम का अर्थ है कि आपने यादव प्रकाश ने वर्णन किया था, भगवान की जो आंख है वो लाल है। कैसे लाल है? जैसे कपी, कपी का अर्थ क्या है? एक बंदर, बंदर का जो पिछला भाग होता है, आसम का अर्थ है पिछला भाग, बंदर का पिछला भाग जो है वो लाल रंग रहता है, उस प्रकार भगवान का आंख है। रामाचार्य ने कहा बंदर के पिछले भाग के वो भगवान के आंखों को तुलना कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, कैसे तुलना कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि अगर उससे अच्छा व्याख्या कर सकते तुम करो। तब रामाचार्य ने कहा कप्यास्यम करते काम जलम पिबंती, तो काम मतलब जो कांति को स्वीकार करता है, पी का अर्थ है पिबंती, पीता है, और जल को पीता है और कांति को स्वीकार करता है, और आसम का अर्थ है विकसित होता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो जल को पीता है और सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करता है और वो विकसित होता है? वो है कमल। तो कपि का अर्थ है कमल, का पी काम जलम पिबंती, और आसम का अर्थ है वो जल को पी के और जो सूर्य का किरणों को स्वीकार करके जो विकसित होता है, जो प्रफुल्लित होता है, वो है कमल। तो भगवान का जो आंख है कमल के बराबर तुलना किया गया। जैसे यादव प्रकाश ने इस प्रकार सुना, सारे उनको डर लगने लगा। अभी रामानुजाचार्य को अगर आगे उनको प्रोत्साहित करने लगेंगे तो मेरा पदवी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अपने सारे शिष्यों को कहा हम रामानुजाचार्य को मारना है, क्योंकि ये आगे जाके हमारे जो अद्वैत सिद्धांत है उसको प्रदूषित कर देगा। तब ऐसा सब शिष्य ने कहा हाँ 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 करना चाहिए। लेकिन एक शिष्य ने कहा ठीक है आप उनको गुरुकुल से निकाल दो ना। तब यादव प्रकाश ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? अगर उनको गुरुकुल से निकाल दूंगा तो और एक गुरुकुल खोल देगा वो, तो मेरे सारे शिष्य उसके पास चले जाएंगे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसे जो शिष्य है उसको मैं मारना चाहता हूँ। असियत में जितने भी संबंध इधर वर्णन किया गया है, माँ पुत्र के बीच में संबंध है और पिता पुत्र के बीच में संबंध है, या दो भाई बहन के बीच में संबंध है, बंधुओं के बीच में संबंध है और मित्रों के बीच में संबंध है, ये सारे संबंध से सबसे श्रेष्ठ संबंध क्या है? गुरु शिष्य का संबंध। जो मायावादी क्या करते हैं, उसी को खत्म कर देते हैं। जब वही खत्म हो गया तो बाकी सब रहा कहाँ? नैतिकता नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, काले असुरी समाज, असुरों का समाज का जो प्रोत्साहन के लिए बहुत सुंदर एक योजना बन जाएगा। क्यों? गुरु शिष्य का संबंध को खत्म कर दो। तो ये गुरु शिष्य का संबंध को खत्म करना है, क्या करना होगा? मायावाद सिद्धांत लाओ। तो मायावाद सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार यादव प्रकाश ने रामानुजाचार्य उनके शिष्य को मारने का प्रयास किया, यही हर शिष्य के साथ मायावादी करते हैं। क्यों? एक शिष्य, एक गुरु जो है मायावाद दर्शन को सिखा के एक शिष्य का आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर देते हैं। दे विल डिस्ट्रॉय देयर स्पिरिचुअल लाइफ। बाद में आप बोलोगे ठीक है गुरु ने शिष्य को मारने का प्रयास किया, क्या मायावादी दार्शनिक जो अपने गुरु को भी मार देते हैं? हाँ। कैसे मारते हैं उसका वर्णन करता हूं। तो मायावादी सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो हर व्यक्ति ब्रह्म है, एवरीबडी इज ब्रह्मन। तो कहते हैं भक्ति करो, कब तक भक्ति करो? जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे। आप भक्ति करते करते मुक्त होने के बाद क्या करो, उस भक्ति को लात मारो। जैसे कि सीढ़ी है, वो सीढ़ी तब तक कि आपका काम का है जब तक आप चढ़ नहीं जाओगे। एक सीढ़ी लेके आप चढ़ते जाओ, चढ़ने के बाद क्या करो, उसी सीढ़ी को लात मार दो। अगर उस सीढ़ी को रखोगे उतरने का चांस है कि नहीं? उसी प्रकार कहते हैं ये जो गुरु है आपके लिए सीढ़ी के बराबर है। क्या करो, उस गुरु का सहारे से आप चढ़ जाओ, मुक्त हो जाओ, कि उसके बाद क्या करो, उन गुरु को लात मारो। अब देखिए जितने भी तथाकथित मायावादीगण अन्य लोग जो भागवत कथा इत्यादि करते हैं, वो अपना फोटो डालते हैं और उनका गुरु का कृष्ण का कोई फोटो नहीं दिखेगा। वो हीरो जैसे अपना आजकल जो फिल्मों का जो पोस्टर दिखता है उससे ज़्यादा स्टाइल में ये लोग खड़े रहते हैं। ये लोग अपना पिचित्र दिखाते हैं। उनसे पूछेंगे आपका गुरु कौन है, वो हमें ही गुरु हूँ, मेरा गुरु कोई नहीं है, मैं अपने आप के लिए गुरु हूँ। हाँ, बचपन में सीखा था, अभी उसका कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। यानी ये जो है गुरु को मारना, गुरु शिष्य को मारना, शिष्य गुरु को मारना, ये मायावादी सिद्धांत का मूल आधार है, जिसको खंडन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रामानुजाचार्य को भेजा। तो रामानुजाचार्य जो पहले आचार्य है, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत को खुलेआम में खंडन करने वाले हैं। पहले कुछ लोग खंडन किए थे, लेकिन उनका व्याख्या में बहुत सारे कुछ त्रुटियां थी, उस खंडन में भी पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन सबसे पहला जो आटम बम जो डाले है मायावाद सिद्धांत के ऊपर, वो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने डाला। श्रीपाद रामानुजाचार्य कोई और नहीं है, वो अनंत शेष के जो शक्ति आवेश अवतार है। अनंत शेष जो है भगवान की अनंत काल से अनंत गुणों का वर्णन कर रहा है। भगवान के अनंत गुण हैं और अनंत गुणों में एक गुण को अनंत काल से वर्णन कर रहे अनंत शेष उनके अनंत मुकुंद से। तो ये जो अनंत देव का जो भगवान को गुणगान करने की जो शक्ति है, वो शक्ति जो है रामानुजाचार्य के अंदर है। तो रामानुजाचार्य जब वो मैसूर की ओर जा रहे थे, मैसूर के पास एक जगह है मेलकोट, तो उधर जैन राजा था। जैन राजा बहुत सारे इधर के जैन के लोग थे और हर व्यक्ति को जैन के रूप में परिवर्तित करते थे। जैसे रामानुजाचार्य आए तो राजा ने उनको सत्कार किया, तो सारे जैन पंडितों को कहा कि इनका सिद्धांत अच्छा है, हम वैष्णव का स्वीकार करेंगे। जैन पंडितों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम उनके साथ वाद विवाद करेंगे। राजा ने कहा ठीक है। जैन पंडितों को मालूम था कि रामानुजाचार्य साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महान पंडित हैं, महान विद्वान हैं और वैष्णव धर्म को स्थापना करने वाले हैं। तब वो लोगों ने कहा ठीक है, हम 1000 पंडित हैं, रामानुजाचार्य के साथ हम हर एक व्यक्ति एक ही समय एक एक प्रश्न पूछेगा। तो शर्त ये है कि रामानुजाचार्य को हर एक व्यक्ति को एक ही समय सबका जवाब देना है। तो राजा ने सोचा कि ये जो तथागत जैन पंडित है ये पहले से हार मान गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखा। तो पूछा रामानुजाचार्य से, ठीक है रामानुजाचार्य का कि ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, सभी लोग एक ही समय 1000 लोग 1000 प्रश्न पूछेंगे, मुझे 1000 लोगों का उत्तर 1000 एक ही समय देना है। तो रामानुजाचार्य का मेरा भी एक कंडीशन है, मेरा कंडीशन क्या है, मैं एक पर्दे के पीछे छुपा रहूंगा। तो रामानुजाचार्य पर्दे के पीछे थे और 1000 जैन पंडित थे, वो सब लोगों ने 1000 प्रश्न एक समय पूछे। तो 2 मिनट का थोड़ा सा शांति रहा, अचानक से ऐसा हू करके आवाज आया, सब जैन पंडितों को अपने कान में उनका प्रश्न का जवाब मिल गया। तो उस समय रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, तो वो थोड़ा सा वो कर्टन हटा के देखे अंदर क्या हो रहा है, रामानुजाचार्य क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा उधर रामानुजाचार्य नहीं थे, वो अनंत देव थे, बड़ा सा सांप था आने को, हजारों पंख वाले। तो अनंत देव के विस्तार है, वैसे तो उनको लक्ष्मण कहा जाता है सरल भाषा में, लेकिन रामानुजाचार्य शक्ति आवेश अवतार है। शक्ति आवेश अवतार किसको कहा जाता है, एक विशेष योजना को संपन्न करने के लिए भगवान एक जीव के अंदर विशेष शक्ति को प्रदान करते हैं। तो ये विशेष शक्ति क्या है रामानुजाचार्य के अंदर प्रदान किया, विशेष शक्ति ये है कि मायावाद भाष्य को खंडन करना। ये सबसे पहला बम श्रीपाद रामानुजाचार्य ने ये जो मायावाद सिद्धांत के ऊपर उन्होंने रचना किया। तो यादव प्रकाश के विषय हम चर्चा करते, रामानुजाचार्य को मारने के लिए प्रयास किए, तो यादव प्रकाश ने कहा चलो हम कैसे मारेंगे उनको, प्लान बनाएंगे। सारे शिष्यों को इकट्ठा किया उन्होंने, चल और इकट्ठा करके उन्होंने प्लान बनाया कि मैं हम रामानुजाचार्य को वध करेंगे। तो जैसे मायावाद सिद्धांत के लोग हैं वो क्या करते हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके वैष्णव धर्म को मारने के लिए प्रयास करेंगे। तो वैष्णव धर्म को मारने का कितना भी प्रयास करने के लिए सोचे, लेकिन कोई ना कोई भगवान की योजना से वैष्णव धर्म जो है वो बच जाता है। रामानुजाचार्य अकेले थे, जितने भी शिष्य थे सभी लोग यादव प्रकाश जो बोल रहे सही ऐसा बात कर रहे थे। तो ये सारे जगत में इसी प्रकार की स्वभाव है, लोग जो है आप मायावादी सिद्धांत को बताएंगे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, चलो हम उसके फॉलोअर बन जाएंगे, ये तो मत तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर बताएंगे कृष्ण भगवान है, सब उनका शरण लेना चाहिए, ये सब सेंटिमेंटल चीजें, ये सब चीजें भावुकता है, ऐसा करके नकार देते हैं। तो संख्या के हिसाब से देखा जाए माओवादियों की संख्या हमेशा रहेगी, और उनका प्लान क्या रहता है, वैष्णव धर्म को निंदा करना और उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए प्रयास करना। जैसे कृष्ण का प्राकट्य हुआ, पूतना को भेजा कंस ने, आप उनको मारो, तो ये माओवादी जो है उनका पूतना का स्वभाव रहता है। और जैसे जहां थोड़ा सा वैष्णवता दिखता है, उस अभी रामानुजाचार्य कोई अभी बड़े आचार्य नहीं बने थे उस टाइम में, केवल उन्होंने थोड़ा सा वैष्णव सिद्धांत को वर्णन करना शुरू किया, उसी समय भले ही उनका शिष्य है, शिष्य मतलब पुत्र से बढ़कर होता है, उनको मारने की प्रवृत्ति आई यादव प्रकाश में। तो रामानुजाचार्य सब लोगों के साथ हो गए, उनके अनेकों अनेकों शिष्यों के साथ यादव प्रकाश काशी की यात्रा में गए, वो भी यात्रा के नाम पे गए। वैसे यात्रा जाया जाता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, लेकिन उनका प्लान क्या था, मैं रास्ते में रामानुजाचार्य को मारूंगा। लेकिन रामानुजाचार्य कोई बात नहीं मानता, सरल सरल तरीके से जा रहे थे। लेकिन रामानुजाचार्य का भाई थे, उनका नाम था गोविंद। तो एक गोविंद ने रामानुजाचार्य का कहा कि ये हमारा प्लान है, आप किसी को मत बताना, उधर से चुपचाप निकल जाना। रामानुजाचार्य तुरंत घबरा गए, तो रातों रात उधर से निकले, उनको मालूम नहीं पड़ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। क्योंकि एक महीने से वो चल रहे थे बहुत दक्षिण से उत्तर की ओर, बहुत चल पड़े थे, हाँ, तो ये जो पर्वतों के बीच में इधर उधर भटक रहे थे रामानुजाचार्य दिन भर। तो अचानक से क्या हुआ, उनको एक पति पत्नी मिले, तो उनको पत्नी को बहुत प्यास लग रहा था, रामानुजाचार्य से मुलाकात हुआ। रामानुजाचार्य ने कहा आप चिंता मत करो, मैं जाके आपसे लिए प्यास पानी लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे गए और पानी लेके उनको पिलाए, और ने कहा कि आपको कंचीपुरम का रास्ता मालूम है क्या। तो पति पत्नी हम भी उधर ही जा रहे हैं, कंची दर्शन करने के लिए, हमारे साथ चलो। तो कल सुबह जाते करके वो रात को आराम किए, सुबह उठे रामानुजाचार्य ने देखा वो दोनों नहीं है। तो दोनों नहीं है वो विचलित हो गए, अरे कहाँ गए लोग। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं और पहुंच गए। तो धीरे धीरे से आगे चलते गए तो रास्ते से एक व्यक्ति आ रहा था। तो रामानुजाचार्य ने उनसे पूछा कि कंचीपुरम कहाँ है, कि उनका रास्ता क्या है। उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा, आप क्या बात कर रहे हो, आप तो कंचीपुरम में ही हो, कंचीपुरम में आके आप बोल रहे हो कंचीपुरम कहाँ, देखे उधर वरदराज जी का मंदिर है। तो रामानुजाचार्य को मालूम पड़ा कि वो जो पति पत्नी आए थे वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण थे। और जैसे वो उधर गए, उनके एक गुरु के रूप में, हृदय में एक गुरु के रूप में स्वीकार किए थे, उनका जन्म थे कांचीपुरम। उनके पास जाके रामानुजाचार्य ने कहा कि अभी मैं क्या करूं। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, आपके गुरु इतना आपसे द्वेष करते हैं तो आप उनसे अलग रहो और वैष्णव सिद्धांत को आप अध्ययन करो, भगवान जो है आपके लिए एक योग्य गुरु भेजेंगे। तो अब रामानुजाचार्य ने पूछा कि मैं क्या सेवा करूं, तो आप जाके वरदराज जी से पूछिए। तो वरदराज जी से कांचीपुरम ने पूछा कि रामानुजाचार्य को क्या सेवा करना है आपका। तो वरदराज ने कहा कि मुझे उन्होंने पानी पिलाया था और बहुत अच्छा लगा, उनके हाथों से मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य कांचीपुरम में वरदराज जी के लिए रोज जल का सेवा किए। अभी भी वो कुआं है जहाँ से रोज रामानुजाचार्य जाते थे, कम से कम 3-4 किलोमीटर रोज जाते थे, अपने हाथों से पानी लेके आते थे, वरदराज जी को देते थे। तो ये रामानुजाचार्य का सेवा था कांचीपुरम में। तो रामानुजाचार्य का 4 बहुत प्रिय क्षेत्र है। सबसे पहला एक श्रीरंगम, श्रीरंगम रामानुजाचार्य के लिए बहुत प्रिय जगह है। तो ये जो श्रीरंग क्षेत्र जो है, वहां से श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या करते हैं, सारे भक्तों को जो उनका शरण लिए हैं उन सबको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए एक आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य के चतुश्लोकी रामानुजतुश्लोकी को वर्णन करते हुए वो कहते हैं जय 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 रामानुज राम रंगनाथामनि नित्यम रंगनाथ धामनि नित्यम, जय रामानुज रंगनाथ धामनि नित्यम। रंगनाथ यानी श्रीरंगनाथ के जो क्षेत्र में नित्य निवास करते हुए वितरम निभृतम विभूतिम स्थितम। तो विभूति अस्तित्व में रामानुजाचार्य के नाम है, एक नाम है उड़यवरु, यानी दो विभूतियों के, दोनों विभूतियों के जो मालिक है वो रामानुजाचार्य है। भगवान श्री कृष्ण वरदराज जी ने कहा रामानुजाचार्य को कि मैं तुमको मैं अपनी पदवी देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? तुमने कहा कि केवल आध्यात्मिक जगत का ही नहीं, आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों जगत के, दोनों विभूतियों के आपको मैं सौंप रहा हूँ। असलियत में भगवान का एक विशेष जिम्मेदारी है रामानुजाचार्य को। क्या जिम्मेदारी है? भगवान ने कहा मैं इन जीवों को उद्धार नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए उद्धार नहीं कर सकता हूँ तो मैं उनका कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ? सारा जगत ऐसा कहता है कि भगवान सबको पालन करते हैं, पोषण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा रामानुजाचार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ, आप उसको संभालो। इसलिए ये जितने भी लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, और जितने भी आध्यात्मिक हो भौतिक जगत है, वो सब कुछ भगवान ने रामानुजाचार्य को लिख के दे दिया, आप संभालो उसको, यू टेक केयर ऑफ इट। इसलिए रामानुजाचार्य को उड़ेवर कहा जाता है, ही इज द ओनर ऑफ एंटायर थिंग। तो ये श्रीरंग में रंगनाथ जी ने इस प्रकार किया। तो उधर से क्या कर रहे रामानुजाचार्य? सारे जगत में हर व्यक्ति को वो अपना कृपा प्रदान कर रहे हैं। दूसरा क्षेत्र है जहाँ श्रीपाद रामानुजाचार्य निवास करते हैं या उनके लिए बहुत प्रिय है, वो है तिरुपति। जय रामानुज शेषशैल श्रृंगे, जो तिरुपति में निवास करते हुए उन्होंने क्या किया? ऐसा वाद किया मायावादियों के ऊपर जो वेदों को मिस इंटरप्रेट, गलत वो लोग भाष्य लिखे, वैसे लोगों के ऊपर उन्होंने ऐसा प्रहार किया। कहाँ प्रहार किया? जैसे कोई कोई पहाड़ के ऊपर है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो पत्थर लेके वो दुश्मनों के ऊपर डालकर उनको मारते हैं, उसी प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम तिरुपति में निवास करते हुए उनने सारे जितने मायावादी हैं उनके सिद्धांत को बहुत अलग अलग प्रकार के जो आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, तर्क के द्वारा उन्होंने खंडन किया। तो जय रामानुज हस्ति अमी नित्यम, हस्तिधाम नित्यम, वरदराज क्षेत्र कांचीपुरम को हस्तिधाम का भी कहा जाता है। जय रामानुज हस्तिधाम नित्यम, उधर के रहते हुए क्या कर रहे हैं? श्रुति और स्मृति सारे वेदों को उन्होंने मंथन करके, सारे पुराणों को मंथन करके श्री भाष्य की रचना किया। वरदराज जी के जो सात आदेश थे वो सात सिद्धांत या पॉइंट्स के ऊपर आधारित होते हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना किया। आगे जय रामानुज यादवाद्री श्रृंगे, मैं उस रामानुजाचार्य को जय करता हूँ जो यादवाद्री त्रिनारायणपुरम मेलकोट, ये चौथा स्थान है। जैसे हमारे लिए गौड़ी वैष्णव के लिए वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी हैं, श्री वैष्णव के लिए चार स्थान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है श्री रंगनाथ, रंगनाथ जी रंगक्षेत्र, दूसरा है तिरुपति, तीसरा है वरदराज का कांचीपुरम, और चौथा है तिरुनारायणपुरम या मेलकोटे या यादवाद्री। तो उधर तिरुनारायणपुरम, यू आर लाइक द सन दैट डिस्ट्रॉयड द डार्कनेस ऑफ द हेट्रिक मिस इंटरप्रिटेशंस। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने आखिरी में उन्होंने शिक्षाएं प्रदान किए, 74 शिक्षाओं को प्रदान किए। 74 शिक्षा को एक शिक्षा था कि आप सब लोग मेरे जो भी अपने आप को मेरा शिष्य कहता है उनको क्या करना चाहिए? मेरा श्री भाष्य पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता है तो तिरुनारायणपुरम यादवाद्री में वास करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकता है कम से कम उधर एक कुटिया बना के, एक कुटिया के अंदर एक रात को रुकना चाहिए उनको। तो उधर रह के क्या किया उन्होंने? यू आर लाइक द फॉरेस्ट फायर दैट डिस्ट्रॉयड एटिस्टिक वीड्स, जैसे एक जब जंगल में आग लगता है तो सारे जितने भी पौधे वो जल जाते हैं, उसी प्रकार जो असुरी वीड्स है, असुरी तत्व है, उन सबको नाश करने वाले हैं। यू आर लाइक द मून टू द ओशन ऑफ डिवोटीज, आप बहुत एक चंद्रमा जैसे हो जो भक्तों की मन के लिए आकर्षक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। वैसे रामानुजाचार्य के विषय में क्या कहा जाए? अनंत स्वयं हैं, तो उनका गुणगान भी अनंत दिनों तक भी करते जाएंगे, उनका कोई सीमा नहीं है। खास करके श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में उन्होंने किस प्रकार अपनी भक्तों से वैष्णव सिद्धांत को प्रकाशित किया वो सुनने को मिलता है। हर बार जब रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिरुभाव तिथि होता है उस समय हम सुनते हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने सन्यासी शिष्यों को शिक्षा दिया, अपने गृहस्थों को शिष्यों को शिक्षा दिया। कैसे शिक्षा दिया? शरणागति। शरणागति जो है वो रामानुज सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। ऐसे उनके अनुसार भक्ति से बढ़कर शरणागति है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं भक्ति करना चाहता हूँ तो रामानुजाचार्य सिद्धांत के अनुसार भक्ति करते रहो, लेकिन भक्ति तब तक करो जब तक आप शरणागत नहीं हो गए। शरणागत एक बार होने के बाद आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है। तो एक बार मैंने एक प्रश्न पूछा था उनके एक आचार्य से, आप ऐसे कैसे कहते हो कि भक्ति से परे शरणागति है? हाँ, भक्ति करते करते शरणागति हो जाता है तो शरणागति ही महत्वपूर्ण चीज़ है, भक्ति इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, नहीं ऐसा क्यों कहते हो? तब आचार्य ने बहुत सुंदर उदाहरण बात बताया। ने कहा भक्ति करते करते जब कोई व्यक्ति शरण लेता है उनको भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप करता है है कि नहीं? इट इज ऑटोमेटिकली, उनको कोई कुछ करना है करके सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब करना है करके सोचने की आवश्यकता, अपने आप जब कर रहा है तो करने की क्या विचार है? तो ये रामानुज सिद्धांत है। वैसे अनेकों अनेकों सिद्धांत रत्न हैं, स्तोत्र रत्न हैं जो रामानुजाचार्य के आचार्य यादव यमुनाचार्य ने रचना किया, उनका अनंत है। उनके जो स्क्रिप्चर्स है अनलिमिटेड है। एक बार एक भक्त श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के पास जाके उन्होंने पूछा, क्या पूछा? कि हमको रामानुज सिद्धांत के साथ क्या लेना देना है, व्हाट वी गॉट टू डू विद श्री संप्रदाय। तब भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि श्रीपाद रामानुजाचार्य सिद्धांत श्री चैतन्य प्रेमोर मंदिर भित्ति स्वरूप, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो प्रेम का मंदिर, कृष्ण प्रेम का मंदिर किसके ऊपर बनाया? रामानुजाचार्य के सिद्धांत के ऊपर बनाया। तो रामानुजाचार्य का सिद्धांत इस प्रकार है, जो अपने आप को वेदांती वेदांती कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने क्या किया, इन वेदांतियों को अपना दांत तोड़ तोड़ के लात मार के दांतों को उनको विदंती बना दिया है। दे हैव किक्ड ऑन द फेस ऑफ द वेदांतीज एंड देन ब्रोकन देयर टूथ एंड मेड देम विदंतीज। तो अगर गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को वास्तविक ताल में कोई व्यक्ति सलाना करना चाहता है, इफ़ यू वॉन्ट टू रियली अप्रिशिएट आवर गौड़ीय सिद्धांत, यू हैव टू स्टडी रामानुज सिद्धांत। हमको रामानुज सिद्धांत को जानना होगा, मध्वाचार्य सिद्धांत को जानना होगा। वो जानने के द्वारा गौड़ीय सिद्धांत क्या है, उसका जो महिमा क्या है, उसके प्रति आकर्षण सलाना उभरता है। इसलिए सब भक्तों को इन आचार्यों के विषय में सुनना चाहिए, आचार्यों के सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। तो रामानुजाचार्य का आज आविर्भाव दिवस है, इसके विषय में उनका प्रणाम मंत्र उच्चारण करेंगे। यो नित्य च्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोह तदस्तितराणि तनयमेने अस्मद्गुरोर् भगवतस्य दैक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इसका अर्थ है मैं रामानुजाचार्य के चरणों में शरण ग्रहण करता हूँ। यो नित्य अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म, जो भगवान अच्युत उनके चरण कमलों के चरणों में हमेशा निवास करते हैं। युग्म रुक्म मतलब जैसे चरणों में भगवान के मकरंद रहता है, उसकी वजह से चरणों में बहुत सुगंध उत्पन्न होता है। यानी रामानुजाचार्य जो हैं अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के निवास करने वाले मकरंद सुगंध है। अगर वो सुगंध नहीं होता तो क्या होता? सारे जगत में प्रचार नहीं होता। असलियत में भगवान के भक्त जो होते आचार्य होते हैं उनको इसी प्रकार हम उनको सोचना चाहिए। भगवान की चरण कमलों का में वास करते हुए उनका जो सुगंध है, ऐश्वर्य है, उसको हर जगह फैलाते हैं। जैसे सुगंध, मान लीजिए कोई एक सेंट का एक बॉटल है या कोई पुष्प है, वो पुष्प है करके कैसे मालूम पड़ेगा लोगों को? उसके सुगंध के द्वारा मालूम पड़ता है कि नहीं। हाँ, वो सुगंध हर जगह जब फैलता है तो लोगों को मालूम पड़ता है इधर सुगंध। तो वैसे ही कृष्ण हैं करके लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? जब उनके चरण कमलों से उत्पन्न हुआ सुगंध की वजह से। इसलिए उनको ऐसा वर्णन किया गया है कि रामानुजाचार्य की वजह से मालूम पड़ा लोगों को कृष्ण है करके। तो कोई भी आचार्य तो इसलिए कृष्ण जो है इन आचार्यों के प्रति ऋणी होके वो क्या करते हैं, अभी तुम संभालो, मैं मेरा अस्तित्व ही लोगों को नहीं मालूम, मेरा अस्तित्व केवल आप लोगों की वजह से, इसलिए आप अपना पूरा संपत्ति संभालो। श्री श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रणाम मंत्र में इसका कहा गया है, यो नित्य अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोह तत्राणि त्रिनायनेने। मैं उनका उस रामानुजाचार्य जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद के रूप में है, मैं उन रामानुजाचार्य के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और उनका शरण लेता हूँ। त्रिनाय मैंने एक तृण के रूप में मैं रहना चाहता हूँ। कभी कभी रामानुजाचार्य जब चलेंगे मेरा सर के ऊपर थोड़ा सा उनका कृपा मिल जाएगा तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। अस्मद गुरो और भगवत से दयेक सिंधो, मैं जानता हूँ कौन है रामानुजाचार्य, अस्मद गुरो, ये हमारे गुरु है। दयेक सिंधो, दया के सागर हैं। भगवत से दयेक सिंधो, भगवान की जो दया है उन्होंने, भगवान ने रामानुजाचार्य को दिया है, तो वो रामानुजाचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। रामानुज चरणों शरणम प्रपद्ये, वैसे रामानुजाचार्य के चरण में मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।